ओम शांति। 27 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्या बजने चाहिए? खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। प्रश्न, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते, स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर, माया ये जो पिछाड़ी का पंप है, दिखावा, पंप माना दिखावा है, 100 वर्ष के अंदर जितनी भी खोजें हुई हैं, सारी 100 वर्ष, इससे पहले नहीं थे। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर और ड्रोन और ये जो ऊपर अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट, ये सारे के सारे कितना इन्वेंशन हुआ है। हाँ जी, ट्रेन को बहुत पुरानी नहीं है, अंग्रेज आए थे 1857 में, उन्होंने 1850 के बाद उन्होंने यहाँ पर ट्रेन चालू की, ज्यादा पहले नहीं हुए ट्रेन। ट्रेन को 100 साल हो गया, परंतु ट्रेन जो है ना, अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने यहाँ आकर पहले भाप से चलने वाली, कोयले से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। मतलब जितने भी साधन है, जितने भी ये नई इन्वेंशन है, एसी ले लो और ये ले लो, क्या बोलते हैं, मोबाइल ले लो, टेलीविजन ले लो, ये सारे एक साथ अभी निकले, पहले नहीं थे। तो जिसके कारण लोग समझते हैं अब तो स्वर्ग हो गया, अब क्या हो गया, ये स्वर्ग हो गया है। बिजली आदि क्या थी? बिजली नहीं थी। क्या क्या निकल गया है इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं तो स्वर्ग है, मुझे समझते ये तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, माड़ियां हैं, गाड़ियां हैं, दुनिया भर का क्या 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 है, बस हमारे लिए यहाँ है। ये माया का सुख है, ये है माया का सुख जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। उसमें तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, हमें गर्मी नहीं लगती, एसी चला लेते हैं, सर्दी नहीं लगती, हम हीटर चला लेते हैं। दुनिया वालों के लिए होगा नर्क, हमारा तो स्वर्ग है। हाँ, पहले फल भी 12 महीने नहीं मिलते थे, सब्जियां 12 महीने मिलती, अब हर सब्जी आपको 12 महीने मिलती है, हर सब्जी आपको, कोई कोई नहीं मिलती जो मौसम की होती है, बाकी सब आपको सब्जियां सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना रहना सब। तो स्वर्ग यही है। गीत, माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, ओम शांति। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर चाहते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते, जगत अंबा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो, जगत के मनुष्यों को रचने वाली, जगत अंबा का मतलब क्या है, जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगत अंबा कहते हैं वे अभी बच्चों के सम्मुख बैठी हुई है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंज गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बात कहते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये जो काली कलकत्ते वाली खप्पर वाली क्या 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 बना के रखा है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति शुभ मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। ये भी मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, ये भी मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो रहा फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस रावण राज्य में हो। तुम कहाँ हो? इस रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है, मुख्य भारत की ही बात है। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही रावण राज्य होता है। अब राम राज्य होता है तो भारत छोटा सा होता है, और जब रावण राज्य होता है तो भारत बड़ा। कितना बड़ा हो जाता है, सारा विश्व ही लंका बन जाता है, सारा विश्व ही भारत होता है। वो टुकड़े टुकड़े हो गए ना, और सारी दुनिया क्या बन गई, लंका। सारी दुनिया लंका, पानी जिसके चारों तरफ पानी, लंका जिसमें दुख ही दुख। कोई ऐसा देश बता दो जहां दुख ना हो। रुलाने वाला रावण किसे कहते हैं? रुलाने वाला, जो ना रुला रहा हो उनको। कोई ऐसा एक देश दुनिया में ढूंढ के लाओ जो रो ना रहे हो। एक देश एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां रो ना रहे। वो जानते नहीं ना, राम जो आत्मा को आराम देने वाला, रावण जो आत्मा को रुलाने वाला, जानते नहीं। सिवाय बाप के कोई भी बता ही नहीं सकता था। आराम देने वाला आत्मा है, परंतु रावण की तो आत्मा भी नहीं है। रावण की तो आत्मा भी नहीं है।
रावण कोई है नहीं।
रावण है हमारे अवगुण, हमारी अज्ञानता, जिनके कारण हम गलतियां करते हैं और फिर हम दुखी होते हैं, रोते। इसलिए गीता में लिखा गया, दुनिया वाली झूठी गीता में लिखा गया, आत्मा स्वयं स्वयं का मित्र है, स्वयं स्वयं का शत्रु। झूठी गीता में भी ये बात लिखी गई, जो आटे में नमक जितना सच है, उसमें ये सच्ची है बात कि आत्मा जब ज्ञानी योगी तो आत्मा होती है तो सुखी होती है, ज्ञानी जब अज्ञानी आत्मा होती है तो दुखी होती है। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आश्री मत पर, बाकी रावण कोई दस सिर वाला नहीं, दस सिर वाला नहीं। ये है पांच विकारों की मत, इसको रावण मत कहा जाता है, शिव बाबा की मत है, श्री मत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्री मत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो ये रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं, समझते नहीं कि आखिरीन रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, अतिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको क्या दिया, दुख दिया है, खास भारत को। इस रावण ने सारी दुनिया को क्या दिया है, दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता नहीं। कमाल की बात तो ये, बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। इतना तो जरूर समझते हैं कि भगवान ही दुख करता सुख करता है, परंतु वो कौन है, कहाँ है, कब आता है, क्या करता है, कैसे आता है, कोई नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे बाबा, रहम करो, मर्सी करो, मेरे ऊपर रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूं, आप कहते मर्सी तो करता रहता हूं। जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता, और कोई सुख दे नहीं सकता, और दुनिया में कोई सुख दे नहीं सकता। मैं हूं ही सुखदाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूं। कहते हैं गॉड फादर ने ये दिया, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो, ये फलाने धन फलाना, ये धन फलाने साधु से, साधु ने दिया। मैं उस साधु के पास गया, उस महात्मा के पास गया, उसने कृपा की और उसने मुझे ये धन, ऐसे क्यों कहते। कोई भी मनुष्य देता है तो हिसाब बन गया ना, कोई भी मनुष्य ने दिया हिसाब बन गया ना, दिया भी मनुष्य ने फिर वापस लेगा भी मनुष्य, परमात्मा ना देता फिर ये क्यों कह रहा है मैं दिलाता हूं। बाबा सिर्फ भक्तों को खुश करने के लिए उनकी भावना को उस मूर्ति में बिठाने के लिए ड्रामा अनुसार देता नहीं है भाई जी, नहीं देता। ये लाइन याद रखो, परमात्मा के पास एक पैसा नहीं है देने के लिए, देगा कहां से, वो पैसे रखता नहीं है। गरीब निवास है, परंतु वो देता है सिर्फ ज्ञान। ये जो पैसे हैं वो जो मनुष्य देगा और वही लेगा, जो सुख देगा वही सुख लेगा, परंतु परमात्मा आकर सिर्फ रास्ता दिखाता है, स्थूल दुनिया की कोई चीज वो नहीं देता। ये अपनी बुद्धि के अंदर एकदम रख लेना है, इस स्थूल दुनिया की चीजें वो देने लगे तो उसे वो लेनी पड़ेंगी, उसे वो संसारिक चीजों को ना देता और ना लेता। कह देता है अपना तन मन धन मेरे को दे दो, ये तीनों चीजें उसने करनी क्या है, वो कहते रखो अपने पास, आप मेरे से पूछ के यूज कर, समझो कि ये शिव बाबा की है, बस समझना है शिव बाबा की, अपनी नहीं समझना है, अपनी समझेंगे तो दुख होगा।
नेगेटिव को पॉजिटिव बदलो,
जबकि सुख देने वाला है ही एक बात, गाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया, हम उनके पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बच्चा हो गया। हेलो भाई, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला, धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की अकृपा हुई, नुकसान हुआ तो गुरु की अकृपा नहीं कहते, वो कहेंगे भगवान की नजर खराब हो गई हमारे ऊपर, भगवान हमारे से रूठ गया, रूठ गया जी, सीधा दोष लगा देते, नाराज हो गया, तभी तो उसने हमारे साथ ऐसा किया, बाकी सारे सुखी हैं, हमारे घर सारे दुखी दुख आ रहे हैं। कोई तरीका बताओ जो हम भगवान को खुश करें। बिचारे भगत लोग समझने बिगड़ जो आया सो कहते रहते हैं, जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं, जो सुना बस ये भी ड्रामा, क्योंकि उन्होंने करना तो वही है जो उनका पार्ट है, अलग तो कर नहीं सकते ना। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं, बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। माया क्या करती है, ऐसा थप्पड़ मारती है, हम कहते थे ना एक थप्पड़ मारूंगा मुंह फेर दूंगा तेरा, ऐसे हो ना, मुंह मोड़ दूंगा तेरा, पीछे की तरफ कर दूंगा तेरा, परंतु वास्तव में ये यहां की बात है, माया ऐसा थप्पड़ मारती है, जाएगा ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाऊं, ठीक ध्यान रखना, गया तो मैं थप्पड़ और मारूंगा, नहीं थप्पड़ नहीं खाना, हम तेरे ही हैं, थप्पड़ से डर के मारे माया के कहने पर चलने लग जाते, हाँ एकदम मुंह फिरा देती है, 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से भी पारकती दिला देती है, तलाक, भगवान को भी जो 21 जन्मों को स्वर्ग का सुख देना है तो इसको तलाक दे दे, मैं तेरे लिए राम कहती हूँ, सोया कर, सोया रह कर आराम कर, तू सवेरे सवेरे उठ के चला जाता है, चल यहाँ बैठ जा,
परेशान करता है,
हाँ
ये कट कट करता रहता
है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्मों के लिए तुमको माला माल कर देते हैं, माला माल कर देते हैं, वे भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वो देने, बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि वॉइसलेस देवताएं थे, उन्होंने महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे, जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे, कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा, बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा, जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वे प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे, जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वे फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे, तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वे तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे, जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वे फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो ये छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम यहाँ बैठे हो श्री मत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वे भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग, कहाँ वे भक्ति, कहाँ ये ज्ञान मार्ग, कहाँ वो भक्ति करते हैं, कहाँ ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है, खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। वो प्लान बनाते हैं अलग और हमारा प्लान बनता है
अलग।
बाबा का प्लान अलग और उनका प्लान अलग। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वो खत्म हो जाना चाहिए, फिर जला दिया तो रावण खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर का नाम भी एक तालाब बना दिया, मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परम पिता परम आत्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया, फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सांप ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, ये तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परम आत्मा सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर वन है श्रीमद् भगवत गीता, सच्ची सच्ची गीता, जो स्वयं परम पिता परम आत्मा आकर सुनाते हैं चक्र के अंत में आकर आदि करते संगम युग पर। एक तरफ कलयुग का अंत और दूसरी तरफ सत्युग की आदि, ये संगम युग दोनों युग एक साथ चलते हैं, कलयुग को सत्युग में बदलते हैं। इस बदलने के समय को, इस परिवर्तन के समय को, इस अमृत वेले को संगम युग कहा जाता है। धर्मशास्त्र एक ही है बस, उसको खंडन कर दिया है, नाम रख दिया है गीता, लिखने वाला व्यास, सुनाने वाला कृष्ण, कहानी के अनुसार सुना रहे। बस व्यास ने लिख दिया, नाम लगा दिया श्री कृष्ण, शिव बाबा को वो जानता नहीं। तो बाकी बाल बच्चे वेद शास्त्र है, तो कृष्ण की गीता तो लिखी गई 2000 में, शास्त्र तो पहले लिखे गए, तो बच्चे कैसे हुए? कौन सी गीता है जिसके बाल बच्चे हैं सारे धर्मशास्त्र? कैसे हैं सारे धर्मशास्त्र गीता के बच्चे? क्योंकि गीता स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सुनाते हैं, जिस ज्ञान को सभी धर्म पिताएं लेते, और गीता का ज्ञान लेने के बाद शरीर सभी के सभी धर्म पिताएं भी परमात्मा के साथ घर जाते हैं, और फिर आकर के अपने समय पर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ को बनाते, जैसा उन्होंने इस समय ज्ञान को समझा। परमात्मा पढ़ाते हैं अब, समझते हैं अब, और फिर आकर सुनाते हैं तब। सब खंडन हो गए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। ये है युद्ध स्थल, तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वे फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रथ थोड़े घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं, क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे, जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं, जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े, तत्व भी बिल्कुल सत्व प्रधान हो जाते हैं। ये भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है, द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी दो कला कम होती हैं, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा ले। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्री मत पर चलते रहना, श्री मत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, जो कुछ करो पूछो। बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है, भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनवाते हैं, वे भी तुम्हारी पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे आगे चल बहुत रौनक देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे, स्वर्ग में फिर वहां जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है भारत का, को जैसे बहिष्ट बना दिया है। तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा, तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। यहां 100 वर्ष में इतना कुछ बन गया, जबकि साइंस धीरे धीरे विकास को पाई है, परंतु साइंस जो है विकास को तो प्राप्त किया, परंतु हो क्या गया, चरित्र खराब होने के कारण साइंस सुख देने की बजाय दुख देने वाली बन गई। क्योंकि चाकू है, मैं उसको ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करूं, मैं उसे किसी का गला काटने के लिए इस्तेमाल करूं। तो जो दुनिया वाले वैज्ञानिक है वो साइंस का प्रयोग ऐसे तरीके से कर रहे हैं जो दुनिया को दुख देने वाला है, और बाबा आकर साइंस का प्रयोग ऐसे उन वैज्ञानिकों के पास हो जाएगा, वही वैज्ञानिक की सत्युग में जाएंगे जो सबका भला चाहते, वो कोई ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जिसके कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। साइंस सारी तुमको वहां काम आती है, साइंस का सुख ही वहां है, यहां तो है साइंस का भी दुख। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ फा फा मार रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बस अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप दिखावा है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि अभी आ जाते हैं, आदि में अभी जाते हैं, आगे ये साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी, ये सब हैं माया के सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे अभी स्वर्ग है ना, ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी चल रही है। समझते हैं धन है महल है बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ता, पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहे पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाना है, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने दो बाप का पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाया है, वर्षा बाप से मिलता है किसका, जायदाद का, वर्षा जो है वो बाप से मिलता है जायदाद का। कौन सी जायदाद है हमारे बाप के पास, 7 गुण 8 इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा मीठे मीठे इकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं, बाबा आकर पुरुषार्थ करने की विधि सिखा रहे हैं, इसमें कभी थकना, सावधानी से श्री मत पर चलते रहना, सावधानी से बाबा जो समझाते वो करते चलो, मूझना नहीं क्या करूं। दुनिया वाले कहते हैं क्या करें कैसे करें, और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, ये करो और ऐसे करो। दुनिया कहती है क्या करें कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये है मूझना। और बाबा के बच्चे क्या करते हैं, ये करो और ऐसे करो, बाबा की श्रीमत पर चलो और हर काम बाबा की श्रीमत पर करो। कोई भी पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि वो रावण का हो जाता है रुलाने वाला। सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनना और बनाने की सेवा करनी है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि, बाबा पर निश्चय रखो कि बाबा जो करण करावन हार है वो हमें सही करवा रहा है। लौकिक में अलौकिक, लौकिक को भी क्या बना दो, अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी, सिंगल सेवाधारी नहीं, डबल सेवाधारी। डबल सेवाधारी का मतलब लौकिक भी सेवा करो और अलौकिक भी सेवा करो, अपनी भी सेवा करो और सर्व की सेवा करो। ये नहीं कि अपनी सेवा में लगे रहो, क्या करें अभी हम अपने को ही सुधार ले रहे हैं, हम सुधर जाएंगे तो फिर दुनिया भी सुधरेगी। तो अब डबल सेवाधारी भाव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं, क्यों बेकार में अपना दिमाग भी खराब किया जाए। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, हमारे बस का नहीं है, ये कभी भी नहीं कहना है। निश्चय बुद्धि बन, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। मेरा है ना, मेरा मेरे का संबंध, ये बंधन बन जाता है, तो इससे क्या करो, न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं को का भक्ति का हिसाब चुक्त होने में थोड़ा समय लगता है। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब किताब है, अब वो भक्ति तो पूरी करेगा, जब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक वो भक्ति को छोड़ेगा नहीं। भक्ति का हिसाब तो पूरा करना है ना, उसको पूरा करने में चुकतू होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसलिए क्या करो, धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग, शांत रहो और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, चाहे वो लौकिक संबंध हो, परंतु हमने समझना है कि हम आत्मा हैं। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो, डबल सेवाधारी बनो और ट्रस्टी बनो। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। वृत्ति कैसे बनती है, जो हमारे संकल्प होते हैं, संकल्प से क्या बोलते हैं, कर्म बनते हैं, कर्म से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वृत्ति बनती है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसी हमारी वृत्ति बनती है, और वृत्ति से फिर हमारे बोल और हमारे कर्म परिवर्तन होता है। तो जब हमारे बोल और कर्म परिवर्तन होते हैं, जैसे बोल और कर्म हम प्रस्तुत करते हैं वैसा चारों तरफ वातावरण बनता है। हम यदि सबको सहयोग देने वाले बन जाते हैं तो सारे कहते हैं बड़ा सहयोगी है, बड़ा सहयोगी है। दान करने वाले बड़ा दानी है, बड़ा दानी है। तो तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसे चारों तरफ आवाज निकलेगा, तो क्या बनेंगे, वायुमंडल को बनाना, मतलब वृत्ति से वायुमंडल, क्योंकि जैसा वायुमंडल बनेगा वैसा ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। यही है सच्ची सेवा, ताकि सभी हमें देखकर स्वयं को परिवर्तन करें। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।